Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, Pratham Skand, Adhyay 16, Shlok Sankhya 21 and 22. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कृष्णत्वदीय पद पंकज पञ्जरान्तम्, अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा, स्मरतव्यं सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्, सर्वविद्धि निषेधास्योरेतयोरेव किंकर, आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महान्, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न परः, वंशी विभूषितकरा, नवनीरधाभा, पीतांबरधरुणबिंबफल धरुष्टा, पूर्णे सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि, करारविंदे न पदारविंदम्, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटीशयानम्, बालं
ముకుందం మనసా స్మరామి జిహవే పిబస్వ మితుమేతదేవ గోవింద రామో ధరమాధవేది నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దైవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతోషాయ ముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీయుత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత కథాధార శ్రీవాసది శ్రీ గౌర భక్తవృంద హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి గ్రంథ శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ కీ జయ హో. ప్రథమ స్కంద అధ్యాయ 16 జిస్కా శీర్షక్ హై పరీక్షిత్ నే కలియుగ కా సత్కార్ కిస్ ప్రకార్ కియా. శ్లోక సంఖ్య 21. సుత్ గోస్వామి కే ముఖార్విన్ సే నిక్లీ హుయి ఇన్ అమృతమయీ శబ్దో కో మేరే సాథ్ సాథ్ ఉచ్చారణ్ కర్నే కా ప్రయాస్ కీజియే. ఆజ్ సుత్ గోస్వామి ధర్మ ఔర్ పృథ్వీ కీ వార్తా కో ఆగే బఢాతే హుయే కహతే హై, బేల్ రూపీ ధర్మ గౌ రూపీ పృథ్వీ కో కహ రహే హై, అరక్ష్యమాణా స్త్రియ ఉర్విబాల శోచస్యతో పురుషాదైరి వార్తా వాచం దేవీం బ్రహ్మకులే కుకర్మణ్య బ్రహ్మణ్యే రాజకులే కులాఖ్యరాన్. అరక్ష్యమాణా స్త్రియ ఉర్విబాలాన్ శోచస్యతో పురుషాదైరి వార్తాన్ వాచం దేవీం బ్రహ్మకులే కుకర్మణ్య బ్రహ్మణ్యే రాజకులే కులాఖ్యరాన్. అరక్ష్యమాణా స్త్రియ ఉర్విబాలాన్ శోచస్యతో పురుషాదైరి వార్తాన్ వాచం దేవీం బ్రహ్మకులే కుకర్మణ్య బ్రహ్మణ్యే రాజకులే కులాఖ్యరాన్. శబ్దాత్ అరక్ష్యమాణ అరక్షత్ స్త్రియ స్త్రియా ఉర్వి పృథ్వీ పర్ బాలాన్ బచ్చోం కో శోచసి తుమ్హే తరస్ ఆ రహా హై అథో ఇస్ తరహ పురుష ఆదే యని ఆద్మియో కే ద్వారా ఇవ సదృశ్ ఆర్తాన్ దుఖియారి వాచాం వాణి దేవీం యని దేవీ కో బ్రహ్మకులే బ్రహ్మకుల్ మే కుకర్మి ధర్మ కే విరుద్ధ కార్యకర్తా హై అబ్రహ్మణ్య యని బ్రాహ్మణ సంస్కృతి కే విరుద్ధ లోక్ రాజకులే ప్రశాసక వంశ మే కుల్ అగ్రియన్ అర్థాత్ అధికాంశ కుల్ జో బ్రాహ్మణ కే హై వో. అనువాద్ క్యా ఆప్ उन दुखियारी स्त्रियों पर दया भाव ला रही हैं जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेली छोड़ दी गई हैं, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या यह आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है और जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदरता से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य को श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में स्त्रियां तथा बच्चे और उन्हीं के साथ साथ ब्राह्मण तथा गाय अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और अरक्षित रहने के लिए छोड़ दी जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे अरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितिवश स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र ही रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देखरेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतएव वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा बुरे चरित्र का कभी साथ नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ लोग वैदिक वाङ्मय की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्म निरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। जहां तक कि दर्शनवेत्ता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा, जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल नौकरी स्वीकार करेंगे अपितु अधम से अधम कार्य भी करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणम्। श्रीमद् भागवतम महापुराण जो कि आज से 5000 साल पहले जिसका निर्माण हुआ, और आज से 5000 साल पहले यह जो कलयुग में आज हमारे समक्ष जो हो रहा है, जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, वो सारा वृत्तांत कह सुनाया। अभी हम जो पढ़ रहे हैं धर्म और पृथ्वी का वार्तालाप, ये धर्म जो है वो पृथ्वी के दुख का कारण बता रहे हैं। पृथ्वी दुखी है। वास्तव में भक्तों, पृथ्वी के दुख का और कोई कारण नहीं होता है। पृथ्वी बड़े बड़े पहाड़ों का बोझ सहन कर सकती है, बड़े बड़े जहां पर बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत कुछ सहन कर सकती है। पृथ्वी कभी इतनी सहनशील है कि कभी भी अपने दुख का रोना नहीं रोती, लेकिन जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब अपराध बढ़ता है, तो पृथ्वी दुखित होती है और वो रोने लगती है। और इस कलयुग में पृथ्वी के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर अधर्म हो रहा है। आज से 5,000 साल पहले कलयुग के सारे लक्षण धर्म रूपी बेल ने कह सुनाए। कह रहे हैं वो पृथ्वी से कि मुझे लगता है आपके दुख का कारण क्या है, कि सब परिवार बिछड़ गए हैं। मुझे लगता है कि आपके दुख का कारण क्या है कि धर्म के 3 पैर कट चुके हैं, क्योंकि धर्म जो है वो अपनी 4 पैरों पर खड़ा हो सकता है। सत्यम शौचम तपस दया, सत्यता पवित्रता तपस्या और दया। लेकिन इस कलयुग में दया का हिरास हो गया। हर जीव मांस भक्षण करता है, एक दूसरे को काट खाने के लिए तैयार होते हैं, तो दया का लूप हो गया। कोई पवित्र नहीं रहता क्योंकि सब लोग पर स्त्री और पर पुरुष संघ से आकर्षित होते हैं। हर कोई नशा करता है, इसलिए तपस्या समाप्त हो गई। और यह कलयुग की सबसे बड़ी निशानी है कि इन अपराधों को अपराध भी नहीं माना जा रहा। आज यदि कोई मांस भक्षण कर रहा है तो उसको देखकर किसी को लगता ही नहीं कि अपराध कर रहा, उसे स्वयं भी नहीं लगता कि मैं अपराध कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज दी जाती हैं जहाँ पर सारे सभ्य लोग आते हैं, नेता आते हैं, राजा जो उस समय जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो आते हैं। कभी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाता कि तुम मनुष्य होकर जानवर का मांस खा रहे हो। उसको कभी भी मतलब पता ही नहीं चलता कि ये अपराध है। हृदय के अंदर ये बात भी नहीं आ रही होती है कि मैं नशा कर रहा हूँ। तो कितना बड़ा नशा कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं फैमिली के साथ, बाप भी घर में बैठा हुआ है, माँ भी घर में बैठी हुई है, और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को बुला के गेट टुगेदर रखा जाता है जिसमें खुले आम वाइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सबको पिलाया जाता है। बोला हम तो खाने पीने वाले लोग हैं भाई, तो मतलब इतना बिंदास हो रहा है बड़े और फॉरेन कंट्रीज में। और इस तरह तो पर स्त्री संघ कुछ भी मतलब उनको लगता ही नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन वाली बात लगती है, उनको लगता नहीं है कि ये अपराध हो सकता है। गवर्नमेंट उस किसी भी मांस आहारी को पनिशमेंट नहीं करती है ना। ये तो 5,000 साल पहले जब ऋषियों ने सुना कि एक गौ के ऊपर और बैल के ऊपर अत्याचार हो रहा था, एक शूद्र पुरुष जो है वो राजा के वस्त्र पहनकर ऐसा अत्याचार कर रहा था, तो उनको तो इतना आश्चर्य हुआ, वो तो सुनकर हैरान हो गए और बोलने लगे कि इसको महाराज परीक्षित ने छोड़ा कैसे, इसको जान से मार कैसे नहीं दिया जिसने गौ और बैल पर प्रहार किया। और आज ये हमारे लिए कुछ आश्चर्य लगता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने उन कसाई गणों को खुली छूट दे रखी है, परमिट दिया गया है, आप शराब पी सकते हो इस दुकान से खरीद कर, आप मांस हर दूसरी तीसरी गली में देखो कितना ज्यादा, अगर देखा जाए तो कितनी सारी होटल्स हैं, कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर दिन रात पशु हत्या हो रही होती है। कभी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा था। तो ये जो कलयुग है उसमें दया विलुप्त हो गई, पवित्रता विलुप्त हो गई, तपस्या समाप्त हो गई। अभी इस कलयुग में थोड़ा बहुत अगर एक चरण धर्म का रह गया है तो वो सत्य है। सत्य को एप्रिशिएट किया जाता है, झूठे लोगों को पनिश दिया जाता है, सत्य को एप्रिशिएट किया जाता है, वो भी बहुत कम। धीरे 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 वो सत्य का चरण भी समाप्त हो जाता है, लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना शुरू हो गए हैं अब। तो ये पृथ्वी से पूछ रहे हैं धर्म, क्या तुम मेरी यानी धर्म की इस दुर्दशा पर दुखी हो, या लोग जो अब अवैध मांस आहार कर रहे हैं उस पर दुखी हो, या फिर अब जो प्रकृति के द्वारा हमें कष्ट मिल रहे हैं, जैसे आजकल बहुत सारा दुर्भिक्ष, सूखा, प्रजा उतस्विन मगवत्य वर्षते, कि जो प्रजा है वो इतनी ज्यादा दुखी हो गई है। पहले जमाने में इतना ज्यादा अकाल नहीं पड़ता था, वर्षा समय पर होती थी, पृथ्वी जो थी वो संतुष्ट थी क्योंकि राजा पवित्र होते थे, तो जिसके कारण यज्ञ होते थे। अभी यहाँ पर अहो सुरादिनी हृत यज्ञ भागा, अब देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा है जिसके कारण आदि दैविक कष्ट हो रहे हैं और प्रजा बहुत ज्यादा दुखी, तो आप उससे दुखी हो। और उसके बाद ये जो धर्म है वो बेल, धर्म रूपी बेल जो है वो गौ रूपी पृथ्वी को कलयुग के सारे लक्षण बता रहे हैं और महाराजा परीक्षित ध्यान कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। ये जो धर्म और पृथ्वी का संवाद है वो महाराजा परीक्षित के अतिरिक्त और कोई नहीं देख रहा वहां पर, और किसी को भी नहीं दिख रहा है। क्यों महाराजा परीक्षित को क्यों दिख रहा है? क्योंकि महाराजा परीक्षित ने जब सुना कि मेरे राज्य में कलयुग का आगमन हो गया है, तो फिर उन्होंने अपने हथियार उठा लिए, वो रथ पर बैठ गए और कलयुग का संहार करने के लिए, दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। तो क्योंकि महाराजा परीक्षित की तीव्र इच्छा थी कलयुग को देखने की, उनको दंड देने की, तो केवल वही इस घटना को देख सके। और व्यास देव उस घटना का वर्णन कर रहे हैं और जो भी इसको पढ़ रहा है, जो इसको श्रवण करेगा, वो सार सार में ये समझ जाएगा कि कलयुग में ये होने वाला है, ऐसा हो सकता है। और जो भागवत महापुराण को एक बार सही तरह से समझ जाता है ना, उसको फिर संसार में कहीं पर भी आश्चर्य नहीं लगता, कोई भी घटना आश्चर्यमय नहीं लगती, क्योंकि उसे पता है कि ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। तो भक्तों, इस कलयुग के और आगे लक्षण बताते हुए बेल रूपी जो धर्म है वो पृथ्वी से कह रहा है, अरक्ष्यमाणा स्त्री उर्वी बाला। कलयुग का एक लक्षण यह है कि स्त्रियां हो या बच्चे, वैसे वैदिक साहित्य में क्या है कि स्त्रियों को, बच्चों को और जो बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, माता पिता जो बड़े हो जाते हैं, उनको सुरक्षा में रहना चाहिए। स्पेशली जो स्त्रियां और बच्चे होती हैं वो इतने, उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि उनका कोई शोषण ना कर सके, उनको मिसयूज ना कर सके। इससे वैदिक सभ्यता यही है कि स्त्रियों को शुरू में माता पिता के आना उसमें सुरक्षित होना चाहिए, माता संरक्षण में होना चाहिए, और उसके बाद जब वो युवा अवस्था में आती है तो उसका विवाह पति के साथ, मतलब एक सुशील और उसके योग्य पति ढूंढकर उस पति के साथ उसका विवाह कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद उस पत्नी को अपने पति के संरक्षण में होना चाहिए। ये वास्तव में कोई उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, बल्कि उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, क्योंकि जब कोई किसी के संरक्षण में होगा तो उसका कोई, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकेगा ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हम संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं माता पिता, तो जब हम उनकी सुरक्षा में होते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे माता बच्चों को बोलती है कि देखो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इधर नहीं जाना है, आपको इतनी देर टीवी नहीं देखना है, तो जब हम किसी के संरक्षण में होंगे तो हम उनके आदेश का भी हमें पालन करना पड़ेगा। इस तरह से जो स्त्रियां हैं उनको पहले माता पिता का, उसके उपरांत पति के आदेश का पालन करना होता है, और उसके उपरांत जब बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनके उनके संरक्षण में रहना होता है। लेकिन ये कलयुग का लक्षण है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। सब बच्चे स्त्रियां वो किसी के अंडर में रहना स्वीकार नहीं करते। वास्तव में ये मूल स्वरूप है एक जीव आत्मा का कि उसे कुछ हद तक स्वतंत्रता है, परंतु स्त्रियों की योनि ऐसी डेलिकेट होती है कि उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है। क्योंकि वो जितना ज्यादा स्वतंत्र रहेगी उतना ही ज्यादा उसका शोषण होगा, तो चिंताग्रस्त हो जाएगी, उसे अकेलापन रहेगा, और भले ही वो कुछ भी प्राप्त कर ले परंतु क्योंकि उसे संरक्षण प्राप्त नहीं है इसलिए सदैव डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, अतृप्ति रहेगी, और निश्चित रूप से अधिक शोषण। वो सोचेगी कि मैं स्वतंत्र रहकर मैं आनंदित रहूंगी, मगर उसका अधिक शोषण किया जाएगा, उसको अधिक उसका उसके साथ मिसव्यवहार किया जाएगा, गलत व्यवहार किया जाएगा, और इस तरह से जो विवाह संबंध है ना वो भी नहीं चल पाते हैं ज्यादा देर, क्योंकि कलयुग में सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते, तो एक दूसरे के संरक्षण में रहना नहीं चाहते, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनकी अच्छे से ठीक से देख रेख नहीं होती है, कुछ बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया जाता है, उनको संस्कार नहीं मिलते। अब माता पिता स्वयं ही संस्कार प्राप्त नहीं करते, शास्त्रों को अध्ययन नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, तो भला संतान को संस्कार कैसे मिलते, और जब संतान को संस्कार नहीं मिलते तो सारा समाज जो है वो गलत राह की ओर जाता है। वास्तव में भक्तों हम सब अपराधी हैं और यह भौतिक जगत एक जेल है। जब हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, हमारे ऊपर कुछ ऋण है, जैसे शास्त्र कहता है देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम, हमारे पास देवताओं के और जीवों के और फिर समाज के कुछ ऋण होते हैं और उसी के अनुसार हमें जीना होता है। तो ये जो प्रकृति है वो एक जेल है और इसके बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, वो सारे प्रतिनिधि जो हैं वो हमें कृतज्ञता सिखाते हैं, वो हमें बताते हैं कि आप ऋणी हो तो हमें इस तरह से जीना चाहिए, हमें उन सबका कृतज्ञ होना चाहिए। तो जो जो हमें वस्तुएं प्राप्त हैं उनकी लिए हमें एक सुव्यवस्थित, जैसे कि शास्त्र में बताया हुआ है, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना होता है। अभी हम सब इस भौतिक जगत में हैं तो हम भगवान की प्रकृति से बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य, पृथ्वी। तो अभी इस भौतिक जगत में क्या होता है, अगर हम कुछ चीजें यूज करते हैं तो उसकी बदली में हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ती है ना, जैसे लाइट यूज करते हैं तो उसका बिल भरना पड़ता है, पानी का बिल भरना पड़ता है। तो उसी तरह से ये जो भौतिक जगत में हम रह रहे हैं तो उसके अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो ये जो सारी सुविधाएं हम ले रहे हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य, पृथ्वी, ये सब सुविधाओं के लेने की बदली में हमें शास्त्र के अनुसार जीना है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार जीना है, तो ये सारा जो ऋण है वो समाप्त होता जाता है। देखिए भक्तों, अगर सूर्य देव ने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया कि भाई आप इतनी देर तक हमारा मेरा सूर्य प्रकाश ले रहे हो और उसकी बदली में आपको इतना बिल मंथली पे करना है, तो जरा सोच के देखिए कितना सूर्य प्रकाश यूज किया है, कितना बिल होगा हमारा। पृथ्वी यदि हम पर ये क्लेम करे कि आपने कितना मुझे भोगा है, कितना मेरे ऊपर चले हो, कितनी देर तक मेरे ऊपर गाड़ियां चलाते हो और अपना बेडरूम में अपने पलंग रखते हो, उसके ऊपर मेरे ऊपर सोते हो, तो मुझे आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना बिल भरना पड़ेगा, तो क्या चुका सकेंगे। और तो छोड़िए, यदि वायुदेव सामने खड़े हो जाएं और बोलेंगे कि अब मैं आपकी नाक के ऊपर एक मीटर फिक्स कर दूंगा और अब तक जितना भी तुमने सांस लिया है उसका हिसाब किताब लूंगा, तो क्या हम उसका बिल पे कर सकेंगे? नहीं, हमें केवल क्या करना है, हमें कृतज्ञ होना है, हमें प्रकृति के इन जो नियम है, इन जो प्रकृति में जो कुछ हम भोग रहे हैं उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी है। अगर हम नहीं कृतज्ञता प्रकट नहीं करते, हम उसके ऋणी होने को स्वीकार नहीं करते, तो ये असुरी प्रकृति है। तो अगर हम इस असुरी प्रकृति को स्वीकार करते हैं तो क्या है, तो शास्त्र कहता है तेस्तेन एवही, तो वो चोर है जो कि प्रकृति के दिए हुए इन सब परंतु कलयुग में कोई भी इन ऋणों के विषय में नहीं सोचेगा और इसी के कारण वो अधिक से अधिक दुखी होंगे, क्योंकि जो चोर है तो उसको सजा मिलेगा। जिसी के कारण इस कलयुग में देखा जाए तो सारे लोग दुखी होते हैं। कोई भले कितना ही धन भी उसके पास होता है, सुविधाएं भी होती हैं, परंतु हृदय से कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इतने सारे दुख हैं, बीमारियां कितनी सारी हैं। अब देखा जाए छोटी सी उम्र में कितनी कितनी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं सबको। पहले ऐसी बीमारियों का नाम भी किसी को खबर नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो ज्यादातर लोग दुखी हैं क्योंकि वो अपने ऋण को नहीं चुकाते। लेकिन शास्त्र एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, श्रीमद् भागवतम 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि भूता तनर्णं पितृणं न किंकरो न यमऋणी च राजन्, कि वो व्यक्ति ना तो किंकर होता है ना ही ऋणी होता है, ना एहसानमंद होता है और ना ही कर्जदार होता है। देवर्षि भूता तनर्णं पितृणं, न देवताओं का, न ऋषियों का, न जीवों का, न अन्य मनुष्यों का और न ही पितरों का, कौन, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, जो पूरी तरह से उसकी शरण में गया है, किसकी, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, वो मुकुंद जिसके चरणों को स्पर्श करके जीव को भौतिक समस्त कर्जों से, समस्त ऋणों से मुक्ति मिल जाती है, जिसने अन्य समस्त कार्य को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो, उन सब के ऋणों के ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ है, चाहे वो देवता हो, साधु हो, कुछ भी हो, वो किसी का कृतज्ञ नहीं रहता। लेकिन जब तक कोई पूर्ण कृष्ण भक्ति में नहीं आ जाता है तो उसे ये सब ऋण चुकाने होते हैं। ये तो वास्तव में स्त्रियों की सुरक्षा और संतान की सुरक्षा, ये हमारे ऊपर ऋण होती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं बेल रूपी धर्म जो है वो गौ रूपी पृथ्वी को कहते हैं, अरक्षमाण स्त्रिय उर्वी बालान शोचस यथो पुरुषादायरी वार्ता, के जो पुरुष हैं जो कि अब चरित्रहीन हो गए हैं और अपनी स्त्रियों की सुरक्षा उनको प्रदान नहीं करते हैं, क्या उनके कारण, इन स्त्रियों की इस दुर्दशा के कारण आप दुखी हो रही हो। और आगे कहते हैं, वाचम देवी ब्रह्म कुले को कर्म्या, वाचम देवी यानी जो ज्ञान की देवी है वो धर्म कुले ब्रह्म कुले को कर्म्या, ऐसे अधर्मी लोग हैं जो ब्रह्म के भले कुल में हो, उन ब्राह्मणों जो अब अधर्मी हो गए उनके हाथ में आ गई है ज्ञान की देवी, क्या इसके लिए आप दुखी हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जो व्यक्ति पैदा होते हैं वो भी बुद्धिमान होते हैं, भले ही ब्राह्मण जो है वो गुण कर्म विभाग है, लेकिन ब्राह्मण की जो संतानें होती है ना वो भी बुद्धिमान होती है। तो इसका मतलब है जितने भी बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी हैं, वो वास्तव में ब्रह्म प्रवृत्ति के हैं। अभी वर्ण आश्रम धर्म जो है वो रहा नहीं संसार में, तो ब्राह्मण का वास्तविक क्या कर्तव्य है, जिसके पास बुद्धि है, जो शास्त्र को समझ रहा है, अच्छा निर्णय कर सकता है, उसका क्या कर्तव्य बनता है कि वो मानव समाज को शास्त्रों के अनुसार चलने के लिए कार्य करें, ऐसा कार्य करें जिससे जीव जो है वो भगवान की ओर आकर्षित। बुद्धिमान लोगों का यही काम है, बुद्धिमान ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण का काम यही है कि वो जीवों को भगवान की ओर लेकर जाए। इसलिए नेचुरली ब्राह्मण्स आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो अब इस कलयुग में क्या है, बुद्धि तो है परंतु ब्राह्मण के लक्षण नहीं है, जिसके कारण श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सांप के नजदीक कोई नहीं जाता। सांप जो होता है उसको जब कोई देख लेता है तो समझता है कि भाई वो तो हमें काट लेगा, तो उसके करीब कोई नहीं जाता। लेकिन सांप के सिर पर एक मणि होती है, कोहिनूर हीरा होता है, उसको देखकर सब लोग उसके पास जाते हैं। उसी तरह मूर्ख के पास कोई नहीं आता है ना, मूर्ख की बात कोई नहीं सुनता है, परंतु जो बुद्धिमान होते हैं उनकी बात सुनने के लिए सब तैयार होते हैं। अब भले ही वो बुद्धि जो है वो कोहिनूर हीरा है, लेकिन जो वो व्यक्ति है वो सर्प है। अब जब जो लोग होते हैं वो सर्प की मणि को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हैं और वो मणि को लेने आते हैं, तभी सर्प उसे डस लेता है। उसी तरह आजकल जो ब्राह्मण है यानी कि जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वो कौन है, साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, फिलोसोफर हैं, उनके पास कितनी बुद्धि है ना, कितना वो बुद्धि से अपना काम कर रहे हैं। तो इस बुद्धि के कारण वो सब लोग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट पर्सन। तो उस समय के बाद क्या हुआ कि वो चल भी नहीं सकता था, उठ भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, पूरा पैरालाइज हो गया था, पर उसकी बुद्धि इतनी तब भी कार्य करती थी। कुछ तो वो ऐसा करता था अपने माइंड से, फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आते थे, फिर वो समझता था कि इसको ऐसे करना। तो उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट। वो इतना बुद्धिमान था कि सारे लोग पागल थे उसका एक एक शब्द सुनने के लिए, बट एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स ही वॉज एथिस्ट 100%। तो भले ही आजकल ब्राह्मणों के पास मणि है परंतु वास्तव में नास्तिकता का विष भी है। तो वो भी जब हम उनकी बात को सुन रहे होते हैं, उनकी बातों से आकर्षित हो रहे होते हैं, तो जो नास्तिकता का विष है वो भी तो हमारे अंदर घुस रहा है ना। तो यहाँ पर ये धर्म जो है वो पूछ रहे हैं पृथ्वी से कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है। आज ज्ञान उन्हीं ब्राह्मणों के पास है, उन्हीं बुद्धिमान व्यक्तियों के पास है जो केवल अधर्म ही जानते हैं, उनको धर्म के विषय में तो पता ही नहीं है। तो अब जो जनता है वो मूर्ख लोगों की तो बात सुनेगी नहीं, क्योंकि मूर्ख जब बोलता है तो कोई भी नहीं सुनता, पर लोग जो है वो विद्वता से आकर्षित होते हैं, तो ज्ञान से आकर्षित होते हैं, परंतु क्योंकि उसमें नास्तिकता का जहर मिला हुआ है और नास्तिकता के जहर के कारण वही ज्ञान जो है वो लोगों का पतन करा रहा है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही जीवों की। ये वास्तव में कलयुग का बहुत बड़ा दुर्गुण है कि जो ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अब यहाँ पर क्या कहें, ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मण के हाथ में। अब ज्ञान तो भले उनके पास है लेकिन धर्म तो है ही नहीं, शास्त्र का ज्ञान तो है ही नहीं कि तुम इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आए हो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें जाना किधर है। आज तुम इस भौतिक जगत में कितनी सुविधाएं अपनी बुद्धि से प्राप्त कर लो, कितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर लो, आखिर तो तुम्हें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आए। तो वो तो कोई जानता ही नहीं है। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में इसलिए दुखी हो, या फिर ब्राह्मणीय राज कुले कुलक्रियां, या फिर यह आप यह देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने राजकुलों के आश्रय का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। मतलब आज अगर हम भौतिक जगत में देखें तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो नौकरी स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है। ब्राह्मण राज कुलों की नौकरी नहीं करते हैं, परंतु आज का जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक लोग हैं, वो अब वर्ण आश्रम के टोटली विरुद्ध हैं। वो तो वर्ण आश्रम धर्म को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं और उनके जितने भी सेक्रेटरीज हैं, जितने वो सब ब्राह्मण हैं, वो सब बुद्धिमान वर्ग जो है वो उनकी चाटुकारी करता है, तो उनके अनुसार कार्य करता है। तो लेकिन इस कलयुग में शिवप्रपा जी कहते हैं वे ना केवल नौकरी स्वीकार करेंगे अपितु अधम से अधम कार्य भी करेंगे। फिर जैसे वो पॉलिटिक्स जो है वो उसको जिस तरह चलाएंगे वो उस तरह से चलेगा। ये कलयुग के बहुत ही बुरे लक्षण हैं, जिसके कारण जो है वो पृथ्वी से बेल पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, क्या ये कारण से आप दुखी हो? अभी आगे भी श्लोक नंबर 22, 23 और 24 में धर्म रूपी बेल जो है वो पृथ्वी से प्रश्न करेंगे, उनसे दुख का कारण पूछेंगे। हम सब पढ़ेंगे, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।